लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। चोर का सहायक अपने से बैर करता व शपथ खिलाने पर भी चुप रहता है। जो मनुष्यों से डरता वह अपने लिए जाल बिछाता है, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता वह सुरक्षित है। बहुत लोग शासक के कृपा पात्र बनना चाहते हैं, किंतु प्रभु मनुष्य को न्याय दिलाता है। कुकर्मी से धर्मियों को घृणा है, निष्कपट व्यक्ति से दुष्टों को घृणा है। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 29वें अध्याय के अंतिम चार पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। सूक्ति ग्रंथ का 29वां अध्याय प्रभु ईश्वर द्वारा दिए गए नियमों के अनुपालन का संदेश देता है। यह अध्याय माता पिताओं, अभिभावकों और परिवार के वयस्कों की भूमिका पर प्रकाश डालता तथा बच्चों की शिक्षा और उनकी उचित परवरिश की अनिवार्यता पर बल देता है। साथ ही यह माता पिता का आदर और अच्छे शासन की आवश्यकता पर बल देता है। अनुशासन में रहना केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हर नागरिक, हर शासक और न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। सत्य का पक्ष लेना और झूठ का बहिष्कार करना, यही सुदृढ़ शासक और न्यायाधीश की पहचान है। फिर इस अध्याय में समाज की भलाई के लिए नबियों की उपस्थिति को भी आवश्यक माना गया है, क्योंकि नबियों के अभाव में जनता आत्म संयम खो बैठती है। नबियों की वाणी को स्वीकार कर ही मनुष्य ईश वचन को स्वीकार करने में सक्षम बनते हैं। इस बात पर भी इस अध्याय में बल दिया गया है। फिर 29वां अध्याय क्रोधी और आवेश पूर्ण उग्र स्वभाव से निकलने वाली बुराइयों की ओर भी ध्यान आकर्षित कराता है। क्रोधी व्यक्ति झगड़े को बढ़ावा देता, परिवार और पड़ोस में उपद्रव को प्रश्रय देता और शांति को भंग कर देता है। इसलिए क्रोध के प्रलोभन में न पड़ा जाए। क्रोध न केवल लोगों को ईश्वर का नाम लेने से रोकता है, बल्कि यह उन्हें शपथ लेने, शाप देने और ईश्वर के नाम का अपमान करने का अवसर देता है। इसी प्रकार यह अहंकार के परित्याग का अनुरोध करता है, क्योंकि मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता, किंतु विनम्र व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। विनम्र व्यक्ति ऊंचे उठाए जाएंगे और अपनी गरिमा में स्थापित होंगे। सम्मान उन्हें बनाए रखेगा, वह उन्हें महान बनाएगा और उन्हें सभी बुद्धिमान और अच्छे लोगों के सम्मान के लिए अनुशंसित करेगा। फिर इस अध्याय में लेखक चोरी और चोरी में सहायक होने के विरुद्ध भी चेतावनी देता है, क्योंकि चोर के सहायक में बहुत अधिक अपराध का बोध होता है। चोरी में भागीदार बनने वाला भी चोर की तरह ही अपराधी होता है। लेखक कहता है कि ऐसे लोग खुद अपने से बैर करते हैं और आत्माओं से घृणा करते हैं। सूक्ति ग्रंथ का आग्रह है कि हम सदैव सत्य का पक्ष लें, किसी की चोरी न करें और न ही दूसरों के पाप में शामिल होवें। तब हमें मनुष्यों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो चोरी करता है उसे ही डर लगता है। संत लुकस रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु येसु कहते हैं, उससे डरो जिसे मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। अर्थात मनुष्य को केवल ईश्वर से भय खाना चाहिए, केवल ईश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए। इसी प्रकार वह सुरक्षित रह सकता है।
ईश्वर 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 ओम
और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। यह अध्याय 1 से लेकर 14 तक के पदों में आगूर की सूक्तियों और 15 से लेकर 33 तक के पदों में संख्यात्मक सूक्तियों में विभक्त है। बाइबल आचार्यों ने सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय को सूक्ति ग्रंथ के सर्वाधिक पेचीदे अंशों में गिनाया है, इसलिए नहीं कि इसके सत्यों को स्वीकार करना हमें मुश्किल लगता है या इसके कथन अथाह और गहन है या इसमें ईश्वर का चित्रण परेशान करने वाला या आपत्तिजनक है, बल्कि इसलिए कि यह रहस्यपूर्ण दावे गैर अनुक्रमिक और ऐसी सामग्री प्रस्तुत करता है जिसका हमारे जीवन के लिए कोई स्पष्ट धार्मिक या नैतिक अनुप्रयोग नहीं है। सच तो यह है कि 30वें अध्याय को समझने के लिए सबसे पहले हमें चिंतनशील रुख अपनाना होगा। इसमें कौन से विचार प्रस्तुत किए गए हैं, मानवता को यह किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, इसमें ईश्वर को किन विचारों और किन शब्दों में चित्रित किया गया है, यह अध्याय मसीह की शिक्षा से कैसे मेल खाता है, इसमें ईश्वर के अनुग्रह को मनुष्य कैसे पहचान सकता है आदि आदि प्रश्नों पर चिंतन हमें इस अध्याय को समझने में मदद प्रदान करेगा। 30वें अध्याय के पहले भाग में आगूर की सूक्तियां निहित हैं, जो घमंड और लालच का मजाक उड़ाता और घमंडी एवं लालची की निंदा करता है, जबकि विनम्रता और संतोष की प्रशंसा करता है। इस पृष्ठभूमि में आइए अब सूक्ति ग्रंथ में निहित आगूर की सूक्तियों को हम पढ़ें और इन्हें समझने का प्रयास करें। 30वें अध्याय के प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं, मस्सावासी याके के पुत्र आगूर की सूक्तियां। उस मनुष्य ने इतियल और ऊकल से यह कहा, मैं मनुष्यों में से सबसे अधिक मूर्ख हूं, मुझमें मनुष्यों जैसी समझ नहीं, मैंने प्रज्ञा प्राप्त नहीं की, मुझे सर्वोच्च प्रभु का ज्ञान नहीं। कौन स्वर्ग जाकर फिर उतरा? किसने पवन को मुट्ठी में बंद किया? किसने पानी को कपड़े में बांध लिया? किसने पृथ्वी की सीमाओं को निर्धारित किया? उसका और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। श्रोताओ, अध्याय के प्रारंभ से ही आगूर नाटकीय ढंग से इस विचार को खारिज कर देता है कि वह बुद्धिमान है। कहता है कि मनुष्यों में से वह सबसे अधिक मूर्ख है, उसने प्रज्ञा प्राप्त नहीं की और उसे सर्वोच्च ईश्वर का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमें संभवतः अतिशयोक्ति लग सकती है, किंतु मनुष्य जब विनम्र बनकर खुद को नीचा दिखाता है तभी वह ऊंचा उठाया जाता है। जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि उसका ज्ञान सीमित है और विश्व में ऐसा बहुत कुछ है जो वह सीख सकता है, तभी वह ज्ञान हासिल कर पाता है और प्रज्ञावान बनता है। यहाँ सूक्ति ग्रंथ का आगूर अय्यूब की तरह ही ईश्वर की सर्वसत्ता को और मनुष्य की सीमाओं को स्वीकार करता है। अय्यूब के ग्रंथ के 25वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, मनुष्य की बात ही क्या जो मात्र कीड़ा है, आदम की संतान ही क्या जो मात्र कृमि है। आगूर खुद के बारे में बोलता है कि उसे सत्य और ज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन के लिए रहस्योद्घाटन की आवश्यकता है। जितने अधिक प्रबुद्ध लोग होते हैं उतना ही अधिक वे अपनी अज्ञानता पर विलाप करते हैं, उतना ही अधिक वे ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं और उनके समृद्ध अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। कौन स्वर्ग जाकर फिर उतरा? किसने पवन को मुट्ठी में बंद किया? किसने पानी को कपड़े में बांध लिया? किसने पृथ्वी की सीमाओं को निर्धारित किया? उसका और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। वस्तुतः यहाँ आगूर मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है, जो हमारे उद्धारकर्ता होने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरे और फिर हमारे अधिवक्ता होने के लिए स्वर्ग में आरोहित हो गए। यहाँ हालांकि मसीह को पिता से अलग व्यक्ति के रूप में बताया गया है, तथापि उनका नाम अभी तक गुप्त है। यदि मसीह न होते तो पृथ्वी की नींव मनुष्य के पाप के कारण जमीन पर अभिशाप के बोझ के नीचे दब जाती। कौन है वह शक्तिशाली जो यह सब करता है? सार यही कि ईश्वर के वचन में किसी भी चीज की कमी पर संदेह का कोई आधार नहीं है। ईश वचनों में किसी प्रकार के जोड़ घटाव की गुंजाइश नहीं।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने बृहस्पतिवार को लसालियन ब्रदरों के शैक्षणिक प्रयासों की सराहना की तथा उन्हें पौत्रता के आनंदमय और फलदायी पद पर प्रेरणा बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने वैटिकन में लसालियन ब्रदरों से मुलाकात करते हुए कहा, मैं आशा करता हूं कि लसालियन धर्म संघ समर्पण के लिए बुलाहट बढ़ेगी और आप उन युवाओं के बीच पौत्रता के आनंदमय एवं फलदायी पद की प्रेरणा बनने में योगदान देंगे। लसालियन ब्रदरों का नाम उनके संस्थापक संत जॉन बैप्टिस्ट दे लसाले के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने युवाओं विशेषकर गरीबों को मानवीय एवं ख्रिस्ती शिक्षा प्रदान करने के लिए मिशन की स्थापना की है। ब्रदरगण शिक्षा के लिए विशेष रूप से समर्पित अपने वैश्विक शिक्षा प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। पोप लियो चौदहवें ने अपने भाषण में कहा, तीन शताब्दियों के बाद यह देखना अद्भुत है कि किस प्रकार आपकी उपस्थिति एक समृद्ध एवं दूरगामी शैक्षणिक वास्तविकता की ताजगी को लेकर चल रही है, जिसके माध्यम से आज भी और विश्व के विभिन्न भागों में आप उत्साह, निष्ठा और त्याग की भावना के साथ युवाओं के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए संत पापा ने ब्रदरों के इतिहास के दो पहलुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया, वर्तमान समय पर उनका ध्यान और समुदाय में शिक्षण की प्रेरिताए एवं मिशनरी आयाम। पोप ने गौर किया कि उनके संस्थापक ने कैसे चुनौतियों को ईश्वर के संकेत के रूप में स्वीकार किया और काम शुरू किया। पोप लियो ने कहा कि अपने स्वयं के इरादों और अपेक्षाओं से परे दे लसाले ने ईश्वर की एक नई प्रणाली को जीवन दिया। जब समस्याएं उत्पन्न हुई तो निराश होने के बजाय संत ने उन्हें रचनात्मक प्रतिक्रियाओं की तलाश करने और नए एवं अक्सर अनदेखे रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। संत पापा ने कहा, यह हमारे लिए भी उपयोगी प्रश्न उठाता है, जैसे युवाओं की दुनिया में आज सबसे जरूरी चुनौतियां क्या हैं, किन मूल्यों को बढ़ावा देने की जरूरत है, हम किन संसाधनों पर भरोसा कर सकते हैं। पोप लियो चौदहवें ने लसालियन के एक अन्य पहलू पर भी प्रकाश डाला, अर्थात शिक्षा देने के कार्य को मिशन एवं प्रेरिताय के रूप में जीना। पोप लियो ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा करने में वे अपने समय की कलीसिया में एक ऐसी सच्चाई को बढ़ावा दे रहे थे जो अब तक अज्ञात थी। शिक्षा के माध्यम से सुसमाचार प्रचार और सुसमाचार प्रचार के माध्यम से शिक्षा देने के सिद्धांत के अनुसार लोग धर्मी और प्रचारकों के समुदाय के भीतर सच्ची प्रेरित आए। पोप ने स्पष्ट किया, विद्यालय का करिश्मा जिससे आप शिक्षण की अपनी चौथी प्रतिज्ञा के समान अपनाते हैं, समाज की सेवा और उदारता का एक बहुमूल्य कार्य होने के अलावा आज भी उस पुरोहिताय भविष्यवक्ता और राजत्व के काम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है जिससे हम सभी ने बपतिस्मा में प्राप्त किया है। पोप ने इस बात की भी प्रशंसा की कि किस तरह धर्म संघी अपने शैक्षणिक संस्थानों में अपने समर्पण के माध्यम से एक नबी के रूप में बपतिस्मा देने वाली सेवा को दृश्यमान बनाते हैं, जो सभी को उनकी स्थिति और भूमिका के अनुसार बिना किसी भेदभाव के जीवित सदस्यों के रूप में कलीसिया के विकास एवं इसके निरंतर पौत्रीकरण में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। पोप लियो 14वें ने अंत में ख्रिस्तीय स्कूलों के ब्रदरों को उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। परमतम पीठ ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय में यूक्रेन पर आयोजित एक कार्यक्रम के अवसर पर वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने गुरुवार को तुर्की में शुरू होने वाले सीधी वार्ता के बारे में कहा कि हमें उम्मीद है कि यह युद्ध को समाप्त करने के लिए एक गंभीर शुरुआत है। सभी की निगाहें तुर्की पर टिकी हैं, जो पोप लियो 14वें की पहली यात्रा का संभावित गंतव्य हो सकता है, जो निकिया महासभा के 1700वें वर्ष पूरा होने साथ ही गुरुवार 15 मई से शुरू हो रहे इस्तांबुल शिखर सम्मेलन को चिन्हित करेगा, जिसमें युद्ध विराम के उद्देश्य से प्रत्यक्ष वार्ता के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों को एक साथ लाने की उम्मीद है। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने यूक्रेनी ग्रीक कार्तिक कलीसिया के तत्वाधान में परमधम पीठ ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय में आयोजित यूक्रेन से और यूक्रेन के लिए आशा के ईश शास्त्री की ओर शीर्षक वाले कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इन सीधी वार्ताओं के लिए उम्मीद जताई, जिसमें पहली बार राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। कार्डिनल ने कहा, हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि शांति के लिए रास्ते खुले रहें। हमें खुशी है कि आखिरकार एक सीधी बैठक की संभावना है और एक वास्तविक शांति प्रक्रिया शुरू होगी। कार्डिनल परोलिन ने सोमवार की सुबह फोन पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण का जिक्र करते हुए कहा कि पोप लियो 14वें द्वारा यूक्रेन के संभावित यात्रा पर विचार करना अभी जल्दबाजी होगी। कार्डिनल ने आश्वासन देते हुए कहा, वे युद्ध को समाप्त करने का आह्वान करना जारी रखेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने पोप बनने के शुरू से ही कई बार किया है। हम जगह देने के लिए भी तैयार हैं। मध्यस्थता के बारे में बात करना बड़ी बात हो सकती है, लेकिन कम से कम हम बैठकों को सुविधाजनक बनाने के लिए अच्छे कार्यालय देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वैटिकन की स्थिति ऐसी है जो दोनों पक्षों को और अधिक करीब लाने की कोशिश करती है, न कि और अधिक विभाजन पैदा करने की। उन्होंने पुष्टि की कि कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी के मिशन द्वारा शुरू की गई उस समर्थित या तंत्र जिसके कारण जबरन रूस ले जाए गए कुछ यूक्रेनी बच्चों को वापस लाया गया है, सक्रिय बना हुआ है। इतिहास के प्रोफेसर डोनाल्ड प्रूटलो ने वैटिकन न्यूज के साथ पोप लियो 14वें के नामों के चयन के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने 19वीं शताब्दी में लियो 13वें के सामने आने वाली चुनौतियों और आज की दुनिया के बीच समानताओं पर ध्यान केंद्रित किया। अपने चुनाव के बाद पहली बार कार्डिनल मंडल से औपचारिक मुलाकात करते हुए पोप लियो 14वें ने अपने पोप नाम के चयन के कारणों के बारे बतलाया। उन्होंने कहा, इसके लिए अलग अलग कारण हैं। उन्होंने बतलाया कि लियो नाम उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि मुख्य रूप से लियो 13वें ने अपने ऐतिहासिक विश्व पत्र रेरुम नोवारुम में पहली बार औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में सामाजिक प्रश्न को संबोधित किया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।